Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Srimad Bhagavad Gita. Ye aap sab log sunte ho. Achha. Iske saath saath और भी बोलते हो, राम गीता, अवधूत गीता, अनुगीता, अष्टावक्र गीता, सपांक गीता, गणेश गीता, ये बहुत से गीता हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी सी विचार करने की बात है। केवल हम संक्षेप में या जिसे शॉर्टकट कहते तो क्या कह देते हैं, गीता, ये भी कह देते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि यह जो जिसे हम कृष्ण गीता करके कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन अभी भी अधूरा है। ये जो है श्रीमद् भगवद गीता अभी भी अधूरा है। क्यों अधूरा है? आप पूछ सकते हो कि क्यों अधूरा है। भगवान ने ही इस बात को कहा कि काले ने अमहता योगो नष्टा। ये क्या मतलब? प्राणी का स्वभाव है प्रमादी होना, और प्रमादी होने के कारण हम जो है कुछ छोड़ देते हैं, कुछ पकड़, संपूर्णतया हम ग्रहण करने में समर्थ नहीं। और जब तक किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को संपूर्णतया ग्रहण नहीं करोगे तो उसका संपूर्ण उपयोगिता का लाभ भी नहीं होगा। आप हमारी बात मत मानो, अन्य किसी की मत मानो, गीता की बात को स्वीकार करो। गीता की पुस्तिका आप सभी बोलते हो, पाठ करते हो तो उसके बाद में उसकी पुस्तिका बोलते हो। गीता की जो पुस्तिका है और प्रत्येक अध्याय के पश्चात आप बोलते हो, वह जो गीता की पुस्तिका है वह क्या है? ओम तत् सत् श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक नाम अध्याय। अमुक नाम का ये अध्याय। अब आप विचार करो, पुष्पिका में क्या बतलाया? तो ओम की चर्चा करेंगे लंबा समय हो जाएगा। तो ओम माने सच्चिदानंद, उसका जो है भू भुव स्व व्याहति इत्यादि से सच्चित आनंद इत्यादि सिद्ध हो जाता है, और उसी से जो है लेकर के कर दिया गया उसका अर्थ तो सच्चिदानंद। ओम क्या? सच्चिदानंद। अब साथ में हम लोग अपने जोड़ लेते हैं सच्चिदानंद परमात्मा। अब जो है सच्चिदानंद परमात्मा, फिर क्या कहा? तत्। अब ये तत् क्या है? तो आप जानते हो तत् माने वह, संस्कृत में तत् कहते हो और हिंदी में उसे वह करके बोलते हो, तो माने वह। तो इससे क्या सिद्ध हो गया? और ये नियम है, जो शब्द संज्ञा के बदले में बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और यहां तत् शब्द क्या है? सर्वनाम है। ओम तो हो गई संज्ञा, उसका जो अर्थ कर दिया सच्चिदानंद वो भी हो गई संज्ञा। किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को क्या कहते हो? संज्ञा कहते हो। तो अब सच्चिदानंद भी नाम है, है? परमात्मा भी नाम है, ओम भी एक नाम। तो ये तो हो गया संज्ञा, और संज्ञा के बदले में जो बोला जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। क्या बोल दिया? तत्। तत् क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या करता है? संज्ञा को ही जो है बतलाने के लिए सर्वनाम, उसकी विशेषता वैशिष्टता या उसको ही संकेत करने के लिए क्या आता? सर्वनाम। तो यहां तत्, तत् का मतलब क्या हुआ? वही ओम, वहां ओम, ओम तत् माने तत् कोई अलग नहीं, किसको बतला रहा? यह जो ओम कहा, जिसे सच्चिदानंद कहा, वही वही क्या है? तब आगे फिर कहा सत, ओम तत् सत। जो यह सच्चिदानंद है वह सच्चिदानंद ही या यह ओम ही सत है। ये अर्थ हो गया ओम तत् सत का। अब जो है सामान्यतया ये अर्थ हमारी समझ में आ जाए कि जो ओम है वही क्या है? का सत्य है, या जो सच्चिदानंद है वही सत्य है। और सत्य का अर्थ आप लोग जानते ही हो, जिसका किसी भी काल में अभाव न हो। है हाँ, बाधित माने किसी के द्वारा बाधित न हो, माने जिसका अभाव न हो, सीधा सार फील हो, माने कोई भी ज्ञान आ जाए लेकिन ज्ञान के आने पर भी उस ज्ञान का अभाव न हो। जितने भी ज्ञान आते उस ज्ञान को लेकर के ही आते, ठीक है ना? तो कोई ज्ञान उसे बाधित करके स्वतंत्र रूप से स्थित नहीं हो पाता। जो भी ज्ञान आता है वो ज्ञान स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं हो पाता है, और जो स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं होता तो उसका आश्रय लेता है, उसके आश्रय में खड़ा होता है, इसलिए उसे बाधित कर ही नहीं पाएगा। बाधित होगा तो कौन होगा? आश्रित ही बाधित होगा, आश्रय कभी बाधित नहीं होता। आप पृथ्वी का आश्रय लिए हुए हो, पृथ्वी का अभाव नहीं होगा, आपका भावाभाव हो सकता है, शरीरत्व है ना? तो आप जो है आ गए तो क्या पृथ्वी को हटा करके आ गए? पृथ्वी को हटा करके नहीं, ये मोटा उदाहरण। ऐसे ही उस ज्ञान को हटा करके संसार में कोई भी ज्ञान कभी भी आ नहीं सकता। आता तो उसका आश्रय लेकर के आता, और चला भी जाता तो भी उसका अभाव नहीं होता। तो किसी भी काल में जिसका अभाव न हो, तो हम काल की हमने कल्पना कर ली, क्या? भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत हमने किसको कह दिया? जो निकल गया। और भविष्य किसको कह दिया गया? जो आने वाला। लेकिन ये आना जाना ये कब? आप जो है सेंट्रल स्टेशन पर खड़े हुए हो, और सेंट्रल स्टेशन पर खड़े होकर के आप पूछ रहे हो अमुक गाड़ी। क्या पूछ रहे हो? अमुक गाड़ी कहां? तो सामने वाला उत्तर देता है कि अभी आई नहीं, आने वाली है। क्या कहता है? अभी आई नहीं, आने वाली। तो इसे क्या कह दिया? ये प्रयोग किसके लिए हो? बस तो अभी वो गाड़ी आई नहीं, आने वाली है। अभी वो घाट कोपर की तरफ है। क्या कहा? अभी घाट कोपर की तरफ है, अभी आने वाली। तो ये क्या हो गया? तो भविष्य का प्रयोग। उसमें किसकी कल्पना कर ली? भविष्य की। अब जो है घाट कोपर में खड़ा हुआ व्यक्ति था, उसने पूछा उसी गाड़ी के विषय में, कहा अमुक गाड़ी। तो उसने क्या कहा? कहा चली गई, घाट कोपर से चली आई। तो वहां उसके लिए क्या बन गई? भूत बन गई। यही तो कहते हैं ना। तो अब जो सेंट्रल में खड़ा था उसके लिए भविष्य, और घाट को ऊपर में खड़ा था उसके लिए भूत। लेकिन गाड़ी कौन है? वही गाड़ी है। वही गाड़ी एक के लिए भूत बन गई और एक के लिए भविष्य बन गई। और फिर मान लो आ गई सेंटर पर, फिर उसने पूछा, कहा ये सामने खड़ी, तो उसके लिए क्या हो गई? वर्तमान हो गई, ठीक है ना? अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो इसको जानना चाहता है वो जो है उसने मान लो उसे साधन मिल गया, बढ़िया हेलीकॉप्टर मिल गया, और हेलीकॉप्टर से उड़ान भरता हुआ कहता है और अपने पास में कहता है कि अमुक गाड़ी, तो उसके लिए गाड़ी क्या बनेगी, क्योंकि वो तो ऊपर उड़ान भर रहा, तो कह रहा गाड़ी चल रही है, क्या कहेगा, उसके लिए न भूत बनेगी न भविष्य बनेगी, कि बनेगी जो इस पृथ्वी तल से ऊपर उठ गया, धरातल से ऊपर उठ गया, तो उसके लिए गाड़ी वर्तमानी है, विद्यमान है, चल रही, उसके लिए गाड़ी भूत भी नहीं है और गाड़ी भविष्य भी, तो भूत भविष्य वर्तमान किसको लेकर के, एक हमारी धरातल कह दें या स्थूलता कह दें, स्थूल दृष्टया या स्थूल रूप से जो है क्या है वह भूत और भविष्य आदि की कल्पना। ये भूत भविष्य आदि की कल्पना किसको लेकर के, का स्थूल को लेकर के, लेकिन जब उससे हटकर के हम देखते हैं, इस स्थूलता से सूक्ष्मता में जाते हैं तो क्या होता, तो कहने लगे न भूत है और न भविष्य, और जब भूत भविष्य नहीं तो वर्तमान ही है, तब उसमें क्या प्रयोग करोगे, त्रिकालावादित का प्रयोग करोगे, तीन काल कहोगे, ये तीन काल भी किसकी मान्यता है, कहा स्थूल दृष्टया। अब जो है वहां पर जो काल है वो कैसा है, वर्तमान काल है, और वर्तमान काल में उसकी क्या है, का विद्यमानता है, उसकी सत्ता को लेकर के भी काल की कल्पना है वो। तो अब जो यहां पर विचार करके हम देखेंगे तो जो काल की भी जो है कल्पना जो है उसी आश्रय को लेकर के है, और कब है तो स्थूलता में जाकर के, लेकिन उसके बगैर काल की भी कल्पना संभव, उसके बगैर काल की कल्पना भी संभव नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे जगत का आधार, व्यवहार का और वैसे भी कौन है, उसी परमात्मा को, बेचारे को रहने दो, हाँ उस जगत का आधार क्या है, तो आप पहले कहोगे पंचभूत हैं, लेकिन हमारे यहां कहा गया जन्या नाम जनको काला, काला जगदा धारा, जितने भी जन्य पदार्थ, आकाश भी अत्यंत सूक्ष्म है, सब कुछ आकाश के अंतर्गत, लेकिन आकाश भी क्या है, जन्य, तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः, और जितने भी जन्य पदार्थ हैं वो कहां हैं, तो किसी न किसी तस्माद वा ये तस्माद है, उससे इस कारण से, और जो क्या नाम ये काल हुआ, वो क्या नाम जो आकाश हुआ, तो किसी काल ही में तो हुआ, जिस कारण से हुआ तो किसी कारण, इसलिए काल से भी वो जगत का, आकाश से भी सूक्ष्म क्या है, काल, और काल की कल्पना, काल का ज्ञान या काल की प्रकाशता का जो आश्रय है वो कौन है, महाकाल कह दो या उसी को कहेंगे चेतन, क्या कहेंगे, महाकाल भी कह सकते, उसी क्या कहेंगे, चेतन, वह है चेतन, बगैर उसके अर्थात उसका प्रकाश करने वाला कोई चाहिए, चेतन का मतलब ज्ञान स्वरूप प्रकाशक, और वो प्रकाशक कौन है, तो जो प्रकाशक होगा वो सत्ता वाला होगा कि बगैर सत्ता का होगा, हाँ स्वयं प्रकाश होगा तो उसकी सत्ता तो होगी ना, तो वो सत्ता वाला जो प्रकाशक स्वरूप है वो ही क्या है, इस सारे काल आदि का भी आश्रय, और वो जो है वही है ओम, वही है सच्चिदानंद, सत्यत आनंद वही है, ये समझ लो, और वो जो है न काल की परिधि में है, किसी की भी परिधि में नहीं, इसलिए काल उसे बाधित, काल तो स्वयं उसी से होने वाला, तो उसे बाधित कैसे कर पाएगा, काल जो है उसे कभी भी बाधित, तो हम सामान्य स्थिति में समझ लेते हैं त्रिकाला बाधित, लेकिन कोई भी काल, काल नाम की कोई भी चीज उसे बाधित कर ही नहीं सकती, काल भी एक कल्पित है उसमें, काल भी क्या है, एक कल्पित है। तो इस प्रकार से जो है वो कौन है, ओम और तत् सत, वही क्या है, सत्य है। ठीक है ना, इतना हो गया। उसके बाद फिर आगे चले, अब क्या कहने लगे, ओम तत् सत, ये कह दिया। और इतना कह के क्या कहा, श्री श्रीमद। अब ये श्री क्या, तो श्री शब्द के अनेक अर्थ हैं। लक्ष्मी अर्थ भी करते हो, है ना, शोभा अर्थ भी करते हो, कांति अर्थ भी करते हो, है वैभव आदि विभूति आदि भी अर्थ लक्ष्मी में ही आ गया, और ये सब अर्थ करते हो, ज्ञान अर्थ भी किया गया है ना। इसलिए किसी को आप जब अपने से वयोवृद्ध को बुलाते हो तो क्या कहते, श्री शब्द लगाते, माने श्रीमान, श्री वाले। तो श्री क्या है, चाहे वो कैसा ही हो, लक्ष्मी शब्द घटित नहीं होता, क्योंकि बुजुर्ग है लेकिन उसके पास तो कुछ नहीं, तो भी कहते हो श्री, क्यों, उसे सम्मान देते हो। माने ज्ञान संपन्न, एक अनुभव से संपन्न, तो उसमें ये सब अर्थ घट जाते। तो श्री शब्द सम्मान का सूचक, एक विशेष गुण का, एक विशेष उसको लेकर के हम उसको संकेतित करते हैं, तो श्री है ना, इस शब्द में आ जाते। और मत, मत प्रत्यय है, उसका मतलब होता है श्री वाला, कांति वाला, लक्ष्मी वाला या ज्ञान वाला। ठीक है ना, तो यहां क्या लोगे, तो यहां जो ओम तत् सत जिसे कहा या जिसे सच्चिदानंद कहा, वही क्या है, वही ज्ञान रूप है, वही जो है ज्ञान रूप है। इसलिए उसका ज्ञान ही, वही जो है क्या है, ज्ञान स्वरूप है, तो उसका जो ज्ञान है वह ज्ञान ही है श्री। और वह श्री जो है, उस श्री वाला कौन है, विचार करो, उस श्री वाला कौन है, उस ज्ञान वाला कौन है। तब कहा भगवत है। अब ये भगवत क्या है, तो भगवत को आप जानते हो, विद्या अविद्या है और यश आदि, ज्ञान वैराग्य है, ये छह गुण जिसमें रहते हैं ये सब ले लिया है, उत्पत्ति स्थिति आदि। तो अब जो है उसे कहते हैं भगवान, तो ये तो उपाधिकृत हो गया ना, ये कैसा हो गया, उपाधिकृत। तो ऐसा क्योंकि वह ज्ञान जो है अब व्यावहारिक स्थिति में कब आएगा, वो तो ज्ञान स्वरूप है लेकिन व्यावहारिक स्थिति में आता ही है तब, तब उसको क्या कह देते हैं, भगवत, तब उसका नाम पड़ता है भगवत। क्योंकि वो ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य वाला जो है, तो वो कौन सा ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य श्री ज्ञान, और उस ज्ञान वाला कौन है, तो ऐसे ज्ञान वाला जो पूर्ण, उस ज्ञान वाला सीधा सीधा ज्ञान जहां से आया, ऐसे जो वाला है वो कौन है, उसी का नाम है भगवत, माने भगवान, ये कह देते। और श्री से संपन्न है, ज्ञान से संपन्न है, इसलिए उसको जो है क्या कहा, भगवत। वो कौन है, अब उस भगवान ने आगे उसे बढ़ाया जिज्ञासु के लिए, तब वो क्या हुआ, गीता। अच्छा, ये गीता शब्द जो है, इस पर विचार किया कभी, गीता नाम क्यों दिया, गाया हुआ, बहुत अच्छी बात। तो गाया हुआ तो गीता कहोगे कि गीत कहोगे, तो गीत कहना चाहिए, और लेकिन कह दिया क्या, गीता। कई विलक्षणताएं, भगवत शब्द जो है ये पुल्लिंग है, और गीत शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, गीता शब्द स्त्रीलिंग है, गीत शब्द नपुंसक लिंग, और गीता शब्द स्त्रीलिंग, और भगवत शब्द पुल्लिंग। और भगवत से संबंधित जोड़ रहे हो तो यहां पर तो नियम ये है कि जिस विभक्ति और जिस लिंग का विशेष्य हो, विशेषण भी उसी का हो, और जिसका विशेषण हो उसी का विशेष भी हो। विशेषण विशेष्यो तत्तल्लिंग भांजी भवंती, ये नियम है व्याकरण का, ग्रामर का। जिस विभक्ति और जिस लिंग का, जिस पुरुष का
विशेषण होगा उसी का विशेष होगा, जिसका विशेष होगा उसी का विशेष, ये नियम है। लेकिन यहां पर तो विलक्षण दिखलाई दे रहा है। और फिर गीता है तो गीत गाया है तो गीत कहना चाहिए, गीता तो एक नाम विशेष हो गया, तो गीत की जगह गीता शब्द का प्रयोग ये कैसे, ये भी आएगा। तब आगे संकेत किया गया इसका, क्योंकि ये नियम ध्यान में रखना पड़ेगा।